नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः ओम अज्ञान्तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा। सम उपस्थित सभी भक्तजनों का स्वागत करते हैं। क्या आपने अपना कीमती समय निकालकर इस शुक्रवार की शाम को यहाँ समय दिया। हम श्रीमद् भगवद गीता से चर्चा कर रहे हैं, अध्याय 4। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय चार दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 16 किम किम कर्म
कर्म
किम
किम
अकर्म अकर्म
इति
इति
कवयः
कवयः
अपि
अपि
अत्र
अत्र
मोहिता तते
तते
कर्म
कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा
मोक्षसे
मोक्षसे
अशुभात्
किं कर्म किम कर्मेति किं कर्म किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिता कव्योऽप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि तते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् फर्स्ट चार वर्ड बने
किम कर्म किम कर्मेति
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 कव्योऽप्यत्र मोहिता
कर्म
किं कर्म किं कर्मेति
कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् किं कर्म किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिता
तदे कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्
क्या है और कर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्णा। तो हम एक बार फिर सभी भक्त जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप समय निकाल कर इस क्लास में आए हैं। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैं बता रहा था, मैं जानबूझ के वापस दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, कि हमने कहा था कि जब हम भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम के प्रवचन में आते हैं तो हमारा मूड कैसा होना चाहिए। हमारा मूड उस पेशेंट की तरह होना चाहिए जो हॉस्पिटल जाता है, और ना ही उस टूरिस्ट की तरह जो होटल में आता है। दोनों में बड़ा अंतर है। टूरिस्ट होटल में जाता है मनोरंजन के लिए, जबकि पेशेंट जो जाता है वो किस लिए जाता है? इलाज के लिए, क्योर के लिए जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ही बचा सकता है और दवाइयाँ बचा सकती है। तो उस मूड से वो बहुत डेस्परेट होता है जब वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है। और इसीलिए हम जब यहाँ आते हैं तो हमको ये पता लगना चाहिए कि पहली बात, भगवान ने खुद ने, जैसे अगर कोई चीज़ बनाता है तो उसकी सर्टिफिकेट देता है, भगवान ने भी ये संसार बनाया और उसकी सर्टिफिकेट दी है, तो सर्टिफिकेट पे स्टैंप लगाया है दुखालयम अशाश्वतम, दैट ये पूरा दुख से भरा हुआ है। भले कभी टेम्प्ररी हैप्पीनेस मिलता है इसके अंदर, लेकिन अल्टीमेटली वो दुखी होता है। सो इसलिए हमको ये पता चलना चाहिए कि नहीं, मैं इस अवस्था में हूँ और केवल श्रीमद् भगवद्गीता श्रीमद् भागवतम ही मेरा एक आश्रय है, तो उसी तरह से आना चाहिए। और जैसे कि अभी इस बार मुझे आदेश मिला है कि मुझे यहाँ बैठकर भगवद्गीता पे चर्चा करनी है, तो मैं एक बात जस्ट कहना चाहूँगा कि हालांकि हम सब प्रयास कर रहे हैं, हम कोई परफेक्ट नहीं है कि यहाँ बैठ के हम चर्चा कर सके, क्योंकि ये इतना गहन विषय है। इवन यहाँ पे भगवान खुद ही कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, कर्मणोपि बोद्धव्यम बोद्धम्य च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणोगति। केवल कर्म भी नहीं समझ पाते, पूरी भगवद्गीता समझ पाना तो बहुत कठिन है, पर हम केवल एक प्रयास कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैं एक स्टूडेंट के रूप में वहाँ बैठता हूँ, पर कई बार टीचर कहते हैं स्टूडेंट को कि यहाँ बैठ के चलो अभी पाठ पढ़ो करके, तो आज वैसी सिचुएशन है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में विदुर जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए मैत्री मुनि उनसे कहते हैं कि तथापि कीर्तियामि अंग यथामति यथाश्रुतम् कीर्तिम स्वम सत हरि कर्तुम गिरा अन्याभिदाशितम्। वे कहते हैं कि हे विदुर जी, आप मुझसे इतने सारे प्रश्न कर रहे हो, लेकिन मेरी कोई योग्यता या मेरी कोई क्षमता नहीं है इस प्रश्नों के उत्तर देने की। पर फिर भी वो कहते हैं कि क्योंकि आपने प्रश्न पूछे हैं और वो प्रश्न श्री भगवान के बारे में है, तो मैं आप प्रयत्न करूंगा। और वे कहते हैं कि यथामति यथाश्रुतम, कि मैंने जितना कुछ भी श्रवण किया है अपने गुरुजनों से और वैष्णव से, और जितना भी मुझे याद रहता है, मैं आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी ये जो जिह्वा है जिसे कुछ न कुछ कार्य करना है, तो ये एक वैश्या वृत्ति को अपनाते हुए गलत कामों में प्रवृत्त हो जाएगी। इसीलिए ये है कि मैं आपके सामने कथा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन प्लीज इसे समझने की कोशिश कीजिए कि मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है। और श्रील प्रभुपाद बहुत ही उत्कृष्ट तात्पर्य लिखते हैं इसमें और कहते हैं कि हर किसी को भगवान का गुणानुवाद का वर्णन करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो इंद्रियां है वो किसी कामों में प्रवृत्त हो जाएगी, तो उसे बचाने के लिए यह अच्छा है कि हम भगवान नाम का कीर्तन करें और उनका गुणानुवाद का वर्णन करें। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का जो गुण और लीला है वो अपार है, और हमारे जैसे बद्ध जीवों को जिसमें चार प्रकार की त्रुटियां है, हम ये पूरा का पूरा भगवान को समझा नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि यथामति यथाश्रुतम, कि जितना आपकी बुद्धि है या जितना आपने श्रवण किया है और जितना आप एसिमुलेट कर पाओ, जितना आप याद रख पाओ, एक तरह से एक ऑनेस्ट प्रयास करना चाहिए, एक सच्चे रूप में उसे बताने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए मतलब जैसे कि हमारी खुद की भी कोई योग्यता नहीं है, पर यही मतलब यहीं से अपना प्रोत्साहन लेकर आपके सामने कुछ दो शब्द कहने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज बाकी हमारी कोई योग्यता नहीं, और सिर्फ एक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की असीम अनुकंपावश हम यहाँ बैठकर इस श्रीमद् भागवतम और भगवद्गीता पर प्रवचन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली शिला प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम और भगवद्गीता की जो व्याख्या की है पाश्चात्य देशों में, नहीं तो उस समय तक पाश्चात्य देश से ये जो गुह्य ज्ञान था ये छुपा हुआ था। कुछ लोग भगवद्गीता जानते थे पर श्रीमद् भागवतम का ज्ञान किसी को नहीं था, तो शिला प्रभुपाद ने इसका प्रचार किया। और केवल शिला प्रभुपाद की अनुकंपा से ही हम इस अवतारी देश में अबू धाबी में बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो किसी के लिए सोचना भी मुश्किल है कि अरब देश में आके आप भगवद्गीता और श्रीमद् भागवतम और हरिनाम का कीर्तन और प्रवचन करेंगे। हम इस श्लोक पे बोलेंगे। भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। सब बताते हैं कि भगवद गीता को आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, चाहे कितने भी इंटेलिजेंस है, पर ये सब्जेक्ट मैटर सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं चलता, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप समझ नहीं सकते। ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मा जी के चार सिर है, हमारे केवल एक ही है, तो उनके चार सिर में भी ये बात तब तक फिट नहीं हो पाई जब तक भगवान की कृपा उन पर नहीं पड़ी। और ब्रह्म विमोहन लीला में हम जानते हैं कि भगवान की उन्होंने परीक्षा लेने की कोशिश की, कि भगवान ग्वाल बाल के रूप में जब ग्वाल बालों का झूठा खा रहे थे तो ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान है, ये कृष्ण, ये कैसी लीला कर रहा है। उन्होंने झूठा मतलब मधुमंगल के मुंह से निकली हुई छाछ अपने मुंह में ली, और इस तरह से उन्होंने जब काम किया तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उन्होंने बछड़ों को चुरा लिया, ग्वालों को चुरा लिया। और एक वर्ष के बाद जब वे वापिस आए, मतलब हमारा एक वर्ष था उस टाइम, ब्रह्मा जी का एक सेकंड खाली, वापस उन्होंने देखा कि अभी क्या हाहाकार मचा है ब्रज में, तो देखा कि भगवान उसी तरह ग्वाल बालों के साथ बैठ के अपना लंच प्रसाद ले रहे हैं करके, तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि ये क्या है। फिर वहां जाकर देखा जहां पे उन्होंने बछड़ों को छुपाया था, तो वहां भी बछड़े हैं, यहां भी बछड़े, वहां भी ग्वाले हैं, यहां भी ग्वाले, वहां भी भगवान, यहां भी भगवान, तो भ्रमित हो गए कि क्या हुआ करके। और बाद में फिर कृष्ण कहे कि अच्छा ब्रह्मा जी का जरा भ्रम दूर करने के लिए मैं वापस इनको बताता हूँ। तो वे सारे के सारे जो गाल बाल और बछड़े थे वे सारे चतुर्भुज भगवान के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि यस, मैं किसके साथ किसकी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा था, तो भगवान को इस तरह से नहीं जाना जाता। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो मुक्त आत्मा है, हम तो बद्ध आत्मा है। जब मुक्त आत्मा भी भ्रमित हो जाते हैं तो बद्ध आत्मा का क्या कहना। तो भगवद गीता को इस तरह से नहीं समझते। और प्रभुपाद जी कैटेगरीली इस तात्पर्य में कहते हैं कि भगवद गीता को किस तरह से समझा जा सकता है, महाजनों ये ना गता सपन था। तो बताते हैं कि केवल महाजनों का, भक्तों का गुरु परंपरा में आचरण करके ही नम्रता के साथ इस भगवद गीता को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ सकेंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है कि आप भगवद गीता का जो गुह्य ज्ञान है उसका एक शब्द भी समझ सकें। एक कथा आती है कि जहाँ पर एक भक्त था बिल्कुल अनपढ़, मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको अंग्रेजी नहीं आती है हम कैसे पढ़ेंगे, या हमको हिंदी नहीं आती है हम कैसे करेंगे करके, पर उनको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वो भगवद गीता लेके पढ़ रहे थे और वो भी भगवद गीता उल्टी पढ़ रहे थे, तो सब लोग उनका उपहास करने लगे, उनका मजाक करने लगे कि आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं। कोई पूछता क्या कर रहे, तो बोलते मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, तो लोग हंसते थे कि उल्टी भगवद गीता पढ़ रहे हैं करके, और सभी उसका उपहास करते थे। और वो भगवद गीता को देख के वो रोने लगे, उनकी आंखों में से आंसू आने लगे, तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो करके, तो उन्होंने कहा कि ये भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण षडैश्वर्य पूर्ण, वो किस तरह अर्जुन के सारथी बन के उनका रथ खींच रहे हैं। और यदि आपको पता हो कि जैसे हम जब कार चलाते हैं तो डायरेक्शन देते हैं लाइट ऊपर करते हैं नीचे करते हैं इस तरह से, लेकिन सारथी को किस तरह से डायरेक्शन किया जाता है, सारथी को अगर दाएं जाना है तो उसके पीठ पे दाएं पैर से मारना पड़ता है तो उसको समझ में आता है कि यस दाएं जाना है, जब युद्ध चल रहा होता है। बाईं तरफ जाना है तो बाईं तरफ उनको पैर मारा जाता है तो वो इस तरफ चलते हैं, सीधे चलना है तो जोर से पीठ पे उनको लात मारी जाती है। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण जो षडैश्वर्य पूर्ण है अपने भक्त की लात खा रहे थे, और ये चीज़ देख के वो रोने लगे कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और ये चीज जब चैतन्य महाप्रभु ने देखी तो उन्होंने कहा कि केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने भगवद गीता समझी है, अन्यथा भगवद गीता को इस तरह से समझा नहीं जा सकता। और इसीलिए ये जब हम देखते हैं कि भगवद गीता में पहला अध्याय में अर्जुन जो चर्चा करते हैं, उसके बाद दूसरे अध्याय में भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं, तीसरे अध्याय में कर्मयोग के बारे में बताते हैं, फिर जब भगवान दिव्य ज्ञान चतुर्थ अध्याय में कहते हैं कि ये जो ज्ञान है वो मैंने तुम्हें नहीं दिया था, सूर्यदेव को दिया था, और इस तरह से जब अर्जुन को समझ में आता है कि भगवान के और उनके कई जन्म हो चुके हैं, वापस भगवान दे रहे हैं यहाँ पे, तो कर्मयोग पूरा अध्याय बताने के बाद भगवान यहाँ कहते हैं कि अभी मैं तुमको निश्चित रूप से बताऊंगा कि कर्म क्या है। एक्चुअली देखा जाए तो भगवद गीता जो है वो पांच सब्जेक्ट मैटर के बारे में चर्चा करती है। वो पांच सब्जेक्ट मैटर क्या है, पहला है ईश्वर। भगवद गीता जो बेसिकली जितनी भी सारी चर्चा है भगवद गीता में पांच टॉपिक कवर करती है, पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा काल और पांचवा कर्म। ये पांच चीज भगवद गीता कवर करती है। और इसमें प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि चार जो चीज है वो इटर्नल है, शाश्वत है, केवल कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है। तो कर्म के बारे में जब चर्चा करते हैं और यदि आप किसी से भगवद गीता की चर्चा करने की कोशिश करो तो लोग एक ही चीज जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस अपना काम करो, फल की आशा मत करो, बाकी कुछ नहीं। और इसी का आश्रय लेके कई लोग इसका गलत यू नो मतलब निकालते हैं, तात्पर्य निकालते हैं और बोलते हैं कि बस भगवद गीता यही है करके, पर उनको पता नहीं कि भगवद गीता ये दूसरे अध्याय में आता है और उसके अलावा 18 अध्याय है। और भगवद गीता का जो हृदय है, जिसमें मतलब बताते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हृदय होता है, उस हृदय के अंदर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कारो, बोलते हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और इस तरह से तुम समझ पाओगे और मुझ तक आ पाओगे। और भगवान फिर अपना आदेश भी देते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच। भगवान कहते हैं कि सारे के सारे धर्मों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, आप डरो नहीं। तो भगवत भगवान जो है वो खुद हमें ये क्या बोलते ये दिलासा दे रहे हैं कि नहीं तुम डरो मत, अगर मेरे भक्त बनोगे तो तुम मेरे पास आओगे करके। और श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि जब हम कर्म की चर्चा करते हैं तो कर्म का जो निर्देश प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 15वें श्लोक में ऑलरेडी हमने इसकी व्याख्या की है, और वे बताते हैं कि गुरु परंपरा में आना चाहिए। जो प्रामाणिक पुरुष होता है, जो भगवद गीता की चर्चा करता है और जिससे हम भगवद गीता सीखते हैं, वो कैसा होना चाहिए, वो गुरु परंपरा में आना चाहिए। और इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं परपट में कि सबसे पहले भगवान ने सूर्यदेव विविश्वान को ये ज्ञान दिया था और विविश्वान ने फिर अपने पुत्र मनु को दिया, उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से परंपरा में ये ज्ञान चला आ रहा है। और वापिस से भगवान कृष्ण अर्जुन को इस ज्ञान को दे रहे हैं, क्योंकि लगता है कि ये ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है। और प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि हमें परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। तो बताते हैं कि जो पूर्ववर्ती अधिकारी है वो कौन है और उनका कैसे किया जाए, यू नो उनका अनुसरण बताते हैं कि यदि आप ऐसा अनुसरण नहीं करोगे तो इवन दो आप बुद्धिमान व्यक्ति हो फिर भी भगवद गीता को समझ नहीं पाओगे। और प्रभुपाद जी ने कई जगह पर ये कोट किया है कि इवन ना बड़े बड़े कई लोगों ने भगवद गीता लिखी है, भारत में कई उदाहरण है, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भगवद गीता है, उसमें कहते हैं कि जब भगवान कहते हैं कि मन मना भवमत भक्तो मध्याजी माम नमस्कारो और सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो कहते हैं कि वो कृष्ण को सरेंडर नहीं करना है, कृष्ण के अंदर जो यू नो ब्रह्म है उन्हें सरेंडर करना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो यही है, यदि आप ज्ञान से भगवान को पाना चाहोगे तो आप पा नहीं पाओगे। भगवान बहुत क्लियर बोलते हैं, संस्कृत हिंदी की तरह है, भगवान कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज मतलब केवल मेरे पास आओ, आप उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट करके नहीं कह सकते कि नहीं भगवान कुछ और कहना चाह रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि यदि आप गुरु परंपरा में आओगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ज्ञान क्या है वास्तविक, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। और प्रभुपाद जी इसके अंदर वापस बतलाते हैं कि ये जो 12 महाजन है ना, उनके नाम बताए हैं कि ब्रह्मा शिव नारद मनु चारु कुमार कपिल प्रहलाद भीष्म सुखदेव गोस्वामी यमराज जनक तथा बलि महाराज, ये चार जो है ये महाजन है। तो ये चार महाजन को यदि हम फॉलो कर ये सॉरी 12 महाजन है, तो ये 12 महाजन को यदि हम फॉलो करते हैं तो हम प्रॉपर परंपरा में आते हैं। और भगवद गीता में 3rd अध्याय के 21वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं महाजनो ये न गता सपंथा यद्य आचरति श्रेष्ठ तत देव तरो जना स यत प्रमाणतम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। वो कहते हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करता है, वह अपने अनुकरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो यदि हम किसी ना जैसे कि लोगों के कई लोग हीरो को फॉलो करते हैं, कई लोग ना बड़े बड़े पॉलिटिशियन को फॉलो करते हैं, कोई लोग फुटबॉल प्लेयर को फॉलो करते हैं, तो बताते हैं कि आप किसको फॉलो करोगे आप उसी की तरह बनोगे करके। इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम महाजनों को फॉलो करें। और प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में कहते हैं कि केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना अत्यंत कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। और प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में और भगवद गीता में कई जगह पर ये कोटेशन देते हैं, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, बोलते हैं कि धर्म क्या है, जो भगवान ने बता दिया वह धर्म है, जो भगवान ने नहीं बताया उसके अलावा आप अगर अपना कुछ कॉन्कॉक्शन करके बोलते हो तो वो सभी अधर्म है। और ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम में यमराज कहते हैं जब यमदूत उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, ऐसा होता है कि आपको वो कहानी पता है कि अजामिल एक बहुत ही यू नो लोअर श्रेणी के व्यक्ति थे, मतलब वो ऐसे बन चुके थे तो ब्राह्मण एक्चुअली, और उसके बाद जब उन्होंने बहुत पाप कर्म किए और उनका जब समय आया तो उनको लेने के लिए यमदूत आए, लेकिन उन्होंने क्या था कि 80 वर्ष की आयु में भी एक्चुअली उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने उस पुत्र का नाम रखा था नारायण। तो उस पुत्र से बहुत ना अटैच थे वो, तो उस पुत्र को जब यमदूत लेने आए तो भय के मारे, डर के मारे उस पुत्र को पुकारा नारायण नारायण, और केवल नारायण शब्द का उच्चारण करने पे विष्णु दूत वहां आ गए और उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा कि नहीं, आप इसे टच नहीं कर सकते, इसे हम विष्णु लोक लेके जाएंगे। तो यमदूत वापस जाके यमराज को पूछते हैं कि ये क्या है करके, और वे श्लोक है 6.3.4, उसमें यमदूत कहते हैं यमराज को, कहते हैं कि हे भगवान, जय जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, शशि गौर निताई की, वे कहते हैं कि हे भगवान, जरा हमें ये बताइए कि इस दुनिया में कितने कंट्रोलर है ना, कितने ईश्वर है। हमें तो लगता था कि केवल एक ही आप कंट्रोलर हो, लेकिन आज हमें पता चला है कि आपका जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर ये यू नो विष्णु दूत आकर वो अजामिल को लेके चले गए, ये ऐसा पहली बार हुआ है हमारे साथ, तो कृपया हमें बताइए कि ये सब क्या है। और वो कहते हैं कि देखिए ये यमदूत बता रहे हैं कि यमदूत भी कितने इंटेलिजेंट है। वह कहते हैं कि जो सुप्रीम जज है ना, जो सबका जज है, वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, बहुत सारे नहीं। हमारी यह अंडरस्टैंडिंग थी कि आप ही सुप्रीम जज हो, लेकिन आज यू नो आपके जुरिडिक्शन में जो विष्णु दूत थे वो आके हमारे पास से अजामिल को ले गए, और इसीलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमें बताइए कि एक्चुअली क्या है, आर यू नॉट सुप्रीम, क्या आप सुप्रीम नहीं है करके। तो और जब वो बोलते हैं कि जब अजामिल ने नारायण का नाम लिया तभी तुरंत ये विष्णु दूत आ गए, तो यमदूतों के मुख से नारायण का नाम सुनकर बड़े प्रसन्न होते यमराज और कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली मैं भगवान नहीं हूँ और मैं सुप्रीम कंट्रोलर नहीं हूँ। तो हमें ये जो यमराज है उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि कई बार ऐसे कि हमने देखा है कि कई लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान नहीं कहते लेकिन उनके शिष्य उनको भगवान कहते हैं, तो वो अपने आप को भगवान मान लेते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या भगवान है तो बोलते हैं कि नहीं, पर मेरे शिष्य मुझे भगवान मानते हैं। तो यहाँ पर यमराज शिक्षा देते हैं कि जब उनके शिष्यों ने उनको कहा कि हम आपको भगवान समझ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी कोई है और वो भगवान कृष्ण है। और फिर बड़े डिटेल में वो बताते हैं कि मतलब भगवान कौन है और हम किस तरह से उनके अंडर में काम कार्य कर रहे हैं। और वहाँ पर ये बताते हैं कि रिलीजियस प्रिंसिपल जो है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म जो है वो भगवान ने जो दिया वही धर्म है, और उनको इन 12 महाजनों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोगों ने इनको जाना है करके। और बाद में वो उनको आदेश देते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति भगवान नाम का जप करता है या उच्चारण करता है तो कृपया उसके पास मत जाओ। तो इसीलिए बताते हैं कि आज भी यमदूत जो भगवान नाम का उच्चारण करते हैं उससे दूर रहते हैं, उनके पास कभी आते नहीं है। और इसीलिए मतलब ये जो धर्म है इसको समझना बड़ा जटिल कार्य है। जैसा हमने लास्ट टाइम जब क्लास ली थी यदा यदा ही धर्मस्य वाले श्लोक पे जब चर्चा कर रहे थे तब भी बताया था कि धर्म एक्चुअली क्या है ना, धर्म की परिभाषा तभी वहां दी थी। और प्रभुपाद जी इस परपट में आखिरी में कहते हैं कि केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है, अतः भगवान अपने भक्तों की अहतों की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को वह बंधन से उभार सकता है। और बाद में भगवान हम देखेंगे आगे के श्लोकों में कि किस तरह से वो बताते हैं कि एक्चुअली कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इन शॉर्ट खाली मैं बताना चाहूँगा कि कर्म मतलब कोई भी कार्य जो कृष्ण भावनामृत में किया गया है, जो अपने को भाव बंधन से बांधता नहीं उसे अकर्म कहते हैं। और कोई भी कार्य जो जीव प्रकृति के अधीन और काल के अधीन रहकर जो भी कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं, उसका हमें रिएक्शन मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। और विकर्म वे होते हैं जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतिम के अपोजिट है, जो उसके विरुद्ध है, वे सारे जो कर्म होते हैं उनको विकर्म कहा जाता है। तो हम जैसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जैसे समझो मेरे पास, जैसे लोग कहते हैं कि आप जो भी कर्म करते हो वो आपके नसीब का है, वह डेस्टिनी में है, तो मैं चाहे अच्छा कर्म करूं या बुरा कर्म करूं ये सब तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास्ट कर्म की वजह से अगर मुझे पैसे मिलते हैं तो मेरे पास ऑप्शन है कि उस पैसे से मैं समझो एक ग्लास दूध लेके पी सकता हूँ या एक ग्लास दारू लेके पी सकता हूँ। तो यदि मैं दूध पीता हूँ तो उसका अपना रिजल्ट है, यदि दारू पीता हूँ तो अपना उसका रिजल्ट है करके। तो जो कर्म आप करेंगे वो ये निर्धारित करेंगे कि आपकी डेस्टिनी क्या है करके। जैसे अगर एयरप्लेन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट जाने के पहले सोच सकते हैं कि मुझे कलकत्ता जाना है, इंडिया जाना है, बांग्लादेश जाना है, पाकिस्तान जाना है या लंदन जाना है, अमेरिका जाना है। एक बार आप प्लेन में बैठ गए उसके बाद आप कह नहीं सकते बीच हवा में कि अरे यार मैंने गलती कर दी, मेरे को अमेरिका नहीं जाना है, मेरे को एक्चुअली पाकिस्तान जाना है, चलो प्लेन घुमाओ। तो वहाँ वो घुमाएगा नहीं। आपके पास जो फ्री विल है, चॉइस है पहले कि प्लेन में बैठने के पहले आप क्या कर्म करेंगे उसके ऊपर उसका रिजल्ट निर्धारित करता है। तो यदि आप कर्म करेंगे तो उससे बंध जाएंगे, आप विकर्म करेंगे उसका परिणाम मिलेगा। आप कृष्ण भावनामृत में कर्म करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर रूप से राधा गोपीनाथ प्रभु ने समझाया था कि जैसे समझो कभी किसी देश में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध में गवर्नमेंट क्या करेगी, सारे जवान व्यक्ति को बोलेगी आओ सेना में भर्ती हो जाओ। तो सब सेना में भर्ती होंगे, उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देगी, उनको गन देगी और बोलेंगे जाओ और लड़ाई करो। और वो जाके जब बॉर्डर पे जब लड़ाई करेंगे व्यक्ति और वो जाके किसी दूसरे व्यक्ति को मारते हैं, समझो उन्होंने कई लोगों को मार दिया, तो बाद में गवर्नमेंट उनको क्या देगी, परमवीर चक्र एक तबका देगी कि लो आपने बहुत अच्छा काम किया। अभी यही परमवीर चक्र लगाकर आप घूम रहे हो और आप अपने वैकेशन पे जाते हो छुट्टी पे और समझो किसी ग्रोसरी वाले से कुछ सामान खरीद रहे हो और भाव तोल के अंदर समझो कुछ फाइट हो गई और आपने वही बंदूक निकाल के मार दिया उसको डिशन, तो बोलते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, फांसी। वो आपको फांसी की सजा देगी। तो आप बोलोगे अरे वहां पर मैंने 30 लोगों को मारा, आपने मेरे को परमवीर चक्र दिया, यहाँ पर केवल एक व्यक्ति को मारा और आप मुझे फांसी चढ़ा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि फर्क है, क्या फर्क है कि आपको वर्दी किसने दी, मैंने, आपको पिस्तौल किसने दी, मैंने, आपको मारने के लिए किसने कहा, मैंने। तो यदि आप मेरे इशारों पर मेरी पिस्तौल से मेरी वर्दी पहनकर आप दुश्मन को मारोगे तो क्या होगा, परमवीर चक्र मिलेगा, उसका परिणाम बहुत अच्छा है और वो कर्म नहीं है। लेकिन आप अपनी इच्छा से अपने स्वार्थ के लिए यदि किसी व्यक्ति की हत्या करोगे भले ही वो सेम पिस्तौल से कर रहे हो फिर भी आपको फांसी की सजा मिलेगी। तो इसीलिए जब भगवान कहते हैं कि कर्म करो, किस तरह करो, मेरे अधीन रह के करो, तो वो जो कर्म हम करते हैं तो वो उस व्यक्ति की तरह है जो गवर्नमेंट का आदेश मान के कर्म कर रहा है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इंडीड उसका अच्छा प्रभाव मिलता है कि भगवान भक्ति देते हैं। और वही कर्म यदि कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि वे सारे जीरो है। जैसे आपके पास एक शून्य है उसकी कीमत शून्य है, दो शून्य है फिर भी शून्य, तीन शून्य है शून्य, यदि उसके सामने भगवान कृष्ण का एक लगता है तो एक शून्य 10 बन जाता है, फिर 100 बनता है, फिर 1000 बनता है, लाख, करोड़, अरब, इस तरह से वो जाते हैं। तो केवल उस एक को रखने से आपके सारे शून्य की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार कहते हैं कि जब हम कृष्ण को मध्य में रख के, उनको सेंटर में रख के जब कर्म करेंगे तो हमारे सारे कर्म जो है उनका जो प्रभाव रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा और वो हमें इस भावबंधन से मुक्ति दिला सकता है, भगवत धाम पहुंचा सकता है। लेकिन यदि कृष्ण नहीं है और सारे कर्म आपने किए तो भागवतम कहता है श्रम एव ही केवलम, आपके जो सारे कार्य वो कैसे हैं, निरर्थक है, उसमें कोई भी कोई फायदा नहीं है ऐसे कार्य करने से। इसलिए बताते हैं कि ऐसे कार्य करने से हमें बचना चाहिए। और कर्म भी जब हम कर्म की चर्चा करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक होते हैं जो इंस्टेंट कर्म होते हैं और एक होते हैं जो डिलेड कर्म होते हैं। मतलब इंस्टेंट मतलब तुरंत मिलता है, जैसे यदि आप रास्ते पे चल रहे हो और आपकी इच्छा हो गई, हाथ में खुजली आई, आपने किसी को एक झापट लगा दी, इंस्टेंट रिजल्ट क्या है, दूसरी झापट आपके गाल पे पड़ेगी फटाक, उसको बोलते हैं इंस्टेंट कर्म कि आपने कुछ कर्म किया तुरंत उसका रिएक्शन मिला। और डिलेड कर्म है कि जैसे समझो आप कहे कि चलो आज फ्राइडे शाम है, कल छुट्टी है, कहीं घूमने जाते हैं और घूमते घामते आपने भेलपूरी खा ली, उसका रिजल्ट आपको दूसरे दिन मिलेगा कि भाई चलो ये मतलब आपने अभी कर्म किया लेकिन रिजल्ट उसका बाद में मिलेगा कि समझो पेट खराब हो गया करके। तो कई कर्म होते हैं, हम इतने डिटेल में कर्म के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम मतलब हमारी ये इच्छा थी कि इवन वासुदेव प्रभु जो हमारे घर पे आए तो उन्होंने बताया कि अभी जगन्नाथ रथ यात्रा का पीरियड चल रहा है तो कुछ हम चर्चा जगन्नाथ जी के बारे में करेंगे। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं फटाफट कर्म के बारे में बोल के फिर हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में चलेंगे। और लास्ट टाइम भी इवन बहुत सारी बातें प्रभु जी ने बताई थी कि जो कर्म के जो सिद्धांत है वो केवल मनुष्य पे लागू होते हैं, कुत्तों पे नहीं होते या जानवरों पे। जैसे सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं, अगर मैंने रेड सिग्नल क्रॉस किया तो मुझे उसका जुर्माना भरना पड़ेगा, लेकिन यदि कोई बिल्ली या कुत्ता उसको करता है तो नहीं मिलता है। तो जो कर्म है इसका जो इफेक्ट है वो भी अलग अलग है कि मतलब आप किस तरह से कर्म करते हैं। जैसे बताते हैं कि यदि आप इंटेलिजेंट क्लास के व्यक्ति है, ब्राह्मण, यदि आपने कोई गलत काम किया है तो आपकी उसकी सजा आपको बहुत कठिन मिलेगी। लेकिन अगर शूद्र कोई गलत काम करता है तो उसको उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका जो मस्तिष्क है वो उतना डेवलप नहीं हुआ और उसको ज्ञान नहीं है। पर बताते हैं कि यदि ज्ञान हो या ज्ञान नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, कर्म लागू होते हैं। हाँ, उसकी जो डिग्री होती है वो अलग अलग होती है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने जब जजमेंट दिया था तो ब्राह्मण को ज्यादा सजा दी थी और शूद्र को कम सजा दी थी। पर बताते हैं कि इग्नोरेंस टू लॉ इज नो एक्सक्यूज। यदि आपको लॉ पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। बताते हैं कि यूनिवर्सल लॉ है, जो प्रकृति के नियम है उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। प्रकृति के नियम की बात क्या करें, भारतीय जो कानून है उसको समझने में 5 साल लगते हैं। 5 साल आप पढ़ाई करो, उसके बाद यदि फॉर्चुनेटली पास हो गए तो भी सारे लॉ समझ में नहीं आते, कुछ कुछ हम स्किप करते हैं। यूएई के लॉ तो हमको कभी समझ में नहीं आते हैं, आज एक है कल दूसरा चेंज हो जाता है। तो ये जो भौतिक संसार के जो नियम है वही हमारे को समझ में नहीं आते हैं, तो भगवान के जो नियम है वो समझना बड़ा बड़ा कठिन है। पर बताते हैं कि फिर भी भगवान के जो सब नियम है वो भगवद गीता और श्रीमद भागवतम में दिए हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आपकी गलती है। जैसे फिर एक बार एक हुआ कि हमारा मित्र था, चेन्नई से आया बॉम्बे पहली बार और बॉम्बे में ट्रेन पकड़ने की कोशिश की। आप जो भी बॉम्बे रहते हैं आपको पता होगा कि बॉम्बे की ट्रेन में यदि आप चढ़ गए और आपको यदि विंडो सीट मिल गई तो मतलब परमवीर चक्र प्राप्त कर लिया, उस तरह की सिचुएशन है। तो बड़ी कठिनाई हो रही थी उनको ट्रेन में घुसने के लिए, जाने को मिल ही नहीं रहा था। बड़ी कोशिश की और वो थोड़े से इंटेलिजेंट व्यक्ति थे तो उन्होंने सोचा कि सारे जो डब्बे आ रहे हैं उसमें मुझे घुसने नहीं मिल रहा है, लेकिन एक दो डब्बे ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली थोड़े खाली है तो मैं ट्राई करता हूँ उसमें घुसने के लिए। तो वो अपना नेम लगा के बैठ गए कि ये डब्बा इधर आ रहा है करके, और वो आए और जैसा उन्होंने मतलब सोचा था वैसे ही हुआ, डब्बा खाली था। तो तुरंत वो डब्बे में चल गए और डब्बे में चढ़ के देखे कि यार खाली है डब्बा, तो ऐसा करके तुरंत टीसी ने उनको बोला टिकट। तो उन्होंने कहा कि यस यस, हम कभी बिना टिकट के तो यात्रा करते ही नहीं, ये लीजिए टिकट। टिकट उनको दिया, टीसी ने कहा ओके 500 रुपये। तो उन्होंने कहा कि 500 रुपये क्यों भाई, टिकट तो लिया है मैंने, 10 रुपये का टिकट है, 500 रुपये क्यों मांग रहे। तो क्या आपने जो टिकट लिया है वो दूसरे कंपार्टमेंट का है, ये फर्स्ट क्लास है, इसमें आप चढ़े हो तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो बोले यार मैं तो पहली बार आया हूँ चेन्नई से, देखो मेरा ये सर्टिफिकेट लेके, बॉम्बे का नियम मेरे को मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा कि नियम पता हो या ना पता हो आपकी गलती है, और आपको फाइन इसलिए मार रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे, नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम भी वो गलती करोगे। तो बताते हैं कि आपको नियम पता है कि नहीं है उसकी सजा भुगतनी है करके। तो कर्म के जो सिद्धांत है वो बहुत ही, भगवान कहते हैं गहना कर्मणों गति, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, क्या है, बहुत मुश्किल है। इंडियड ऐसा कि जब हम 3रा अध्याय पढ़ते तो भी समझ में नहीं आता कई बार के क्या कह रहे हैं करके। तो इसीलिए यदि हम गुरु परंपरा में महाजनों से और भक्तों से समझने की कोशिश करेंगे तो ही समझ में आ सकता है। और समझने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सहनशीलता, पेशेंस और नम्रता। यदि हमारे पास नम्रता और टॉलरेंस दोनों है तो ही हम समझ सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आता है, सोचता है क्या भगवद गीता के बारे में चर्चा हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे अच्छा था मैं कहीं पर घूम के आता, ये क्या पढ़ रहे हैं, कुछ तो पल्ले पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ ऊपर से जा रहा है। रूपा जी बोलते कोई बात नहीं आओ। यदि आके अगर कोई सो भी जाता है तो कहते हैं कम से कम क्लास में आके सोया, घर पे नहीं सोया। आपके कान में ये मेडिसिन की तरह है कि आपके कान में यदि श्रवण जाएगा तो ऑटोमेटिक कार्य करेगा, आपको पता नहीं चलता। कई बार जब मेडिसिन लेते हैं तो हमको पता नहीं रहता है, लेकिन वो अंदर जाती है और हम लोग ठीक होते जाते हैं करके। और इसीलिए सत्संग में आते रहना चाहिए, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा यार, मेरे को समझ में नहीं आता है करके। तो ये उसके लिए नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है, जब आप आओगे तभी आपके धीरे धीरे समझ में आना लगेगा। और भले आपको फिलोसफी समझ में नहीं आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सारे शास्त्रों का निचोड़ है वो क्या है, हरिनाम। यदि आप हरिनाम ले रहे हैं सच्चे दिल से तो भगवान बोलते हैं ददाति बुद्धि योगम तम, कि मैं आपको वो समझ दूंगा कि आप आ सको। जब ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए थे तो केवल 5 वर्ष के बालक थे, उनको कोई श्लोक बोलना नहीं आता था, लेकिन भगवान ने क्या किया, उनका शंख उनके सर पे टच किया और उससे उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे भगवान की जो प्रार्थनाएं थी वो प्रार्थनाएं की। तो भगवान कहते हैं कि आप डरो मत, मैं हूँ, केवल आप आओ। और भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि ये जो है ये कैसा है, ये जॉयफुल्ली परफॉर्म किया जाता है, इसमें मतलब कोई वाइवा नहीं हो रहा है, कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है बीच बीच में कि बताओ लास्ट टाइम क्या कहा था। ऐसा कहेंगे तो सब सोचेंगे यार बहुत कठिन है, कुछ पूछ रहे हैं नहीं आऊंगा करके, ऐसा कोई नहीं। आओ सुनो, जितना समझ में आता है समझो, पर समझ क्या है सबका निचोड़, हरिनाम। यदि आपने हरिनाम ले रहे हैं तो ये क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम। धीरे 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 आपको जो मन है वो क्लीन होता जाएगा और हमको ये धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। सो अभी हम क्योंकि लास्ट सोमवार को ही ना रथ यात्रा थी, तो हम थोड़ी सी, क्योंकि दो तीन भक्तों ने मुझसे कहा था कि थोड़ा रथ यात्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का आविर्भाव कैसा हुआ है, तो हम उसके बारे में थोड़ा प्रयास करने का कोशिश करेंगे। बताते हैं कि चार धाम जो है, जो अलग अलग धाम है, वह है बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। ये हमारे चार धाम माने जाते हैं। तो बद्रीनाथ में जो वर्शिप होती थी, बताते हैं कि सतयुग के अंदर बद्रीनाथ की वर्शिप की जाती थी। श्री रामेश्वरम, श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग में उनकी अर्चना की जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी। द्वारका, द्वापर युग में श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी, द्वारका धाम प्रबंध था। और कलयुग में जगन्नाथ की पूजा की जाती है। तो बताते हैं कि जगन्नाथ जी जो है वो बड़े ही मर्सीफुल है, उसमें बहुत सारे कुछ नियम नहीं है, कुछ नहीं है, और हम जब चर्चा करेंगे तो पता चलेगा। तो जगन्नाथ जी की जो कथा है वो इस तरह से आती है। एक्चुअली कथा जगन्नाथ जी की और रथ यात्रा का जो लीला है वो बहुत ही लंबी है, हम पूरा तो कवर नहीं कर पाएंगे। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कभी यदि और समय मिलेगा तो करेंगे, लेकिन संक्षेप में कहने की कोशिश करेंगे कि पहले के जमाने में राजा इंद्रद्युम्न हुआ करते थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बड़े परम भक्त थे और उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान से कभी मिलूं करके। तो कई भक्तों की कुछ इच्छा होती है। तो एक बार उनके राज्य में एक भक्तगण आए जो ट्रैवलर थे घूमते हुए, और उन्होंने उन्हें भगवान नील माधव की कथा कहनी शुरू की। तो भगवान नील माधव जो है वो नीलाद्री पर्वत पर रहते थे, और जब उन्होंने भगवान नील माधव की गुणानुवाद का वर्णन किया तो राजा के मन में बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि मैं भगवान नील माधव को ढूंढूं और उनका दर्शन करूं। तो उन्होंने अपने सारे सैनिकों को और ब्राह्मणों को भेजा कि जाओ नील माधव का पता लगा के आओ। तो सारे लोग गए, संसार भर में घूमे और वापिस आ गए, कोई पता नहीं लगा पाया। लेकिन उनका जो एक मंत्री था विद्यापति, वह वापिस नहीं आया और वह जाके बोला कि नहीं, मैं ढूंढ के ही निकालूंगा कि नील माधव जी कहाँ है। और बताते हैं कि उनकी जो तीव्रता थी, उस तीव्रता की वजह से वो एक ऐसी जगह पे गए जो शबरों का राज्य था। शबर मतलब, प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो व्यक्ति होते हैं जो सुअर का रख रखाव करते हैं, सुअर को पालते हैं, तो वे शबर लोग थे। तो उनकी राजधानी में गया और उनको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ मुझे नील माधव कहीं मिलेंगे करके। तो वे जब गए तो विश्वासु नाम का एक शबरों का राजा था, उस राजा के घर में वो रुके। और विश्वासु के घर में थोड़े दिन जब रहे तो विश्वासु की जो कन्या थी ललिता, विश्वासु ने कहा कि आप मेरी कन्या से विवाह करो करके। और विश्वास विद्यापति को ये पता चला कि यस, विश्वासु को पता है नील माधव कहाँ है करके, क्योंकि वे जब उनके घर में रहते थे अतिथि के रूप में, तो उन्होंने क्या देखा कि विश्वासु हर रात रोज को बाहर निकलते हैं और दूसरे दिन दोपहर को घर पर आते हैं। और जब वे घर पर आते हैं तो उनका जो शरीर है एक बड़े ही अजीब खुशबू से सुगंधित रहता है, और ये खुशबू कहीं इस भौतिक जगत में अवेलेबल नहीं है। ये बड़ी, मतलब ऐसा बताते हैं कि कई बार हम जब जो सुगंध, जैसे बताते हैं कि बारिश होता है तो मिट्टी की जो सुगंध है वह सुगंध कोई परफ्यूम पैदा नहीं कर सकता। एक बार गिरिराज महाराज ने एक भक्त से कहा था कि जब वो जुहू में थे तो जब पहली बारिश गिरी तो उन्होंने कहा कि ये जो सुगंध है, जैसे भगवान कहते हैं कि आई एम टेस्ट ऑफ वाटर, और वो भगवान को हर जगह देखते हैं। तो बताते हैं कि जो धरती पर पहले बरसात का जो पानी गिरता है उसमें से जो सुगंध आती है वो फैक्ट्री का कोई भी परफ्यूम पैदा नहीं कर सकता। तो विश्वासु के शरीर से एक अजीब प्रकार की सुगंध आती थी और उनको लगा कि नहीं, ये सुगंध में कुछ ना कुछ राज जरूर है। तो उन्होंने भगवान नील माधव का पता लगाने के लिए अपना, हालांकि वो ब्राह्मण थे, और एक शबरी कन्या से उन्होंने विवाह किया। कहा कि नहीं, मैं नील माधव का पता लगाऊंगा। तो बताते हैं कि यदि भगवान को पाना है तो ये जो सारे बंधन है उनको तोड़ना पड़ता है, तो ही भगवान अपने को मिलते हैं। नहीं तो सोचते कि नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं केवल यही करूँगा वो करूँगा। भगवान के पाने के लिए यदि कोई भी काम करना चाहिए तो उसे कर लेना चाहिए। तो उन्होंने फिर ललिता से एक दिन कहा कि प्रिय, मुझे बताओ कि ये जो आपके पिताजी हैं उनके शरीर से ये खुशबू किस प्रकार आ रही है और ये क्या राज है करके। तो ललिता ने कहा कि नहीं नहीं स्वामी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं बता सकते। तो ललिता ने सोचा कि नहीं, ये तो मेरे पति है, मुझे बताना चाहिए करके। तो उन्होंने कहा कि हालांकि मेरे पिताश्री ने मुझे कहा है कि मैं आपको नहीं बताऊं, लेकिन क्योंकि आप मेरे पति हो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पिताजी जो है वो भगवान नील माधव की आराधना करने के लिए जाते हैं, उनकी पूजा करने के लिए नीलाद्री पर्वत पर जाते हैं, और ये बात कोई नहीं जानता। और वो नीलाद्री पर्वत में भगवान कहाँ पर है वो भी किसी को पता नहीं, केवल मेरे पिताजी को पता है। और मेरे पिताजी ने सिर्फ मुझसे ये कहा था कि मैं पूजा करने के लिए जाता हूँ, मैंने भी कभी दर्शन नहीं किए हैं, और उन्होंने कहा कि ये बात किसी को बताना मत। तो जब विद्यापति ने सुना नील माधव के बारे में तो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने भगवान का धन्यवाद दिया और कहा कि यस भगवान, एक्चुअली आपकी कृपा से ही मुझे पता चला है कि आप कहाँ हो, तो आप अभी इतनी कृपा करो कि किसी तरह आप यू नो मेरे को दर्शन दो करके आप। तो वो दर्शन के बड़े तुष्ट होते हैं और वो कहते हैं ललिता को कि आप अपने पिता से आग्रह करो कि मुझे केवल एक बार वहां ले जाए, बस मैंने कभी आपसे कोई चीज मांगी नहीं है, लेकिन एक दामाद के रूप में मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे केवल एक बार भगवान के पास ले चलो। तो कई बार ललिता ने विश्वासों से कहा कि इनको एक बार ले चलो ले चलो, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं ले जा सकता करके, लेकिन बार 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 प्रयत्न करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है चलो मैं लेके जाता हूँ। तो ललिता विद्यापति को कहती है कि मेरे पिताजी आपको एक बार लेके जाएंगे वहां पर। तो बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते लेकिन एक शर्त पर। बोलते क्या शर्त है? बताते कि आपकी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी और आपको आंखों की पट्टी बांध के वो ले जाएंगे और वहां आप भगवान का दर्शन कर पाओगे। तो विद्यापति सोचते हैं कि ठीक है पट्टी तो पट्टी, कम से कम भगवान का दर्शन तो करने मिलेगा। पर वो भी क्या होते हैं कि बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। वो अपने साथ ललिता को कहता है कि मुझे कुछ राई के दाने दे दो करके, यू नो मस्टर्ड सीड जो होता है वो अपने साथ में ले लेते हैं। और जब विश्वासु उनकी आंख पर पट्टी लगाकर उन्हें ले जाते हैं ताकि उन्हें रास्ता पता ना चले कि कहां पर नील माधव है, तो वो क्या करते हैं कि राई के दाने धीरे 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 गिराते जाते हैं। तो जिस पथ से वो जाते हैं वहां पर राई के दाने गिरते जाते हैं और उनको पता था कि थोड़े समय के बाद क्या होगा, उस राई का वृक्ष पैदा होगा, उनका पौधा निकल आएगा और वह मेरा रास्ता होगा कि मैं पता लगा दूं करके। तो वो ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने पर उनकी पट्टी निकाली जाती है। तो जब पट्टी निकाल के भगवान नील माधव का दर्शन करते हैं तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब साक्षी गोपाल का दर्शन किया था तो उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया, उन्होंने कहा प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। उन्होंने कहा कि हे भगवान आप प्रतिमा नहीं हो, आप ये मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। तो विद्यापति ने देखा कि यस भगवान स्वयं यू नो भगवान नील माधव मेरी आंखों के सामने है, और वह भगवान की स्तुति करने लगे। और विश्वासु ने उनको कहा कि आप यहाँ पे रुकिए, मैं क्या करता हूँ भगवान के लिए यू नो कंद मूल और फ्रूट और ये सब लेके आता हूँ और भगवान की आराधना करेंगे। तो वो लेने के लिए जाते हैं और तब तक क्या होता है कि विद्यापति भगवान से प्रार्थना करता है और एक अजीब दृश्य देखता है। वह क्या देखता है कि एक वृक्ष पर एक कौवा सोया हुआ होता है और वो सोते सोते अचानक एक झील में गिर जाता है, जो बाजू में झील होती है। तो जैसे ही वो झील में गिरता है क्या होता है कि वो चतुर्भुज रूप के अंदर यू नो विष्णु दूत के रूप में आके और उड़ जाता है करके। तो तुरंत सोचते हैं कि अरे ये क्या घटना है करके, सोचते हैं कि ये तो मुक्ति मिल गई इसको, तो मैं भी वही करता हूँ। तो वो वृक्ष पर चढ़ते और जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश करते एक आवाज आती है कि विद्यापति तुम ये भूलो मत कि तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, तुम्हें राजा इंद्रद्युम्न ने यहाँ पर भेजा है और तुम्हें राजा इंद्रद्युम्न को वापस बताना है कि नील माधव कहाँ है करके। तो वे रुक जाते हैं और वापस आके नील माधव जी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी यदि इच्छा हो तो यू नो मैं वापस जा सकता हूँ और आप राजा इंद्रद्युम्न आपका दर्शन कर सकते हैं करके। तो जब विश्वासु वापस फल फ्रूट लेके आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि नील माधव उनसे कहते हैं कि देखो विश्वासु मैं तुम्हारे उससे बड़ा प्रसन्न हूँ, आपने मेरी बड़ी दिल से सेवा की है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन ये अभी जो आप जो मेरी ये सिंपल वर्शिप कर रहे हैं केवल कंद मूलों से और फलों से, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अच्छा यू नो सेवा चाहिए मेरे को, थोड़ा अपीलेंस चाहिए मेरे को। सो विश्वासु को लगता है कि ये जो है ये इनकी चाल है, किसके विद्यापति की, इसी ने भगवान के कान भरे हैं और कुछ तो गलत कहा है करके। तो वो क्या करता है कि उसको बांध देता है, विश्वासु उसको बांध के वहीं छोड़ देते कि मतलब अभी बस तुम मरो करके ना, तुमने ऐसा किया है करके। तो ललिता को ये पता चलता है कि विद्यापति को बांधा गया है, तो ललिता आके उसको छुड़ाती है और बाद में कहते हैं कि एटलीस्ट आपने ना क्या किया, इसको छोड़ दीजिए करके, इसको मुक्त कर दीजिए। और तुरंत विद्यापति वहां से दौड़ के कहाँ जाते हैं, राजा इंद्रद्युम्न के पास। राजा इंद्रद्युम्न को बताते हैं कि मैंने नील माधव के दर्शन किए हैं और आपको मैं नील माधव तक ले जा सकता हूं करके। तो राजा तुरंत सेना लेके निकल पड़ते हैं नील माधव के दर्शन करने के लिए, और जो राय के जो पौधे होते हैं उस पौधे का रास्ता देखते हुए वो नील माधव के पास जाते हैं। तो वहां देखते तो नील माधव वहां नहीं होते, नील माधव वहां से गायब हो जाते हैं। तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है कि ये क्या करके, और तुरंत वो सोचते हैं कि ये विश्वासु की चाल है, कि क्योंकि वो चाहता था कि मैं भगवान के दर्शन न करूं, उन्होंने वहां से भगवान को हटा दिया करके वहां से उनको गायब कर दिया है, तो तुरंत जाते विश्वासों के पास और उनको अरेस्ट करते हैं और उनको सजा देते हैं। तो तभी एक उनको आकाशवाणी सुनाई देती है कि नहीं राजा इंद्रद्युम्न, विश्वासों ने कुछ नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ से गायब हुआ हूँ और आप चिंता ना करें, आप मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें और उस मंदिर का निर्माण करने के बाद मैं उस मंदिर में आऊँगा। और वो कहे कि मैं एक दारू ब्रह्म के रूप में आऊँगा और वहाँ पर आप मेरी अर्च विग्रह की पूजा कर सकते हैं करके। तो राजा इंद्रद्युम्न उनको छोड़ देते हैं और कई समय के बाद राजा इंद्रद्युम्न को एक लकड़ी का जो कुंद होता है वो दिखाई देता है। तो वो कुंद को जब लेके आते हैं तो उसको कुंद को कई कुछ जो लोग होते हैं कुछ हिला नहीं पाते हैं एक्चुअली। तो फिर एक उनको आवाज़ सुनाई देती है कि इस कुंद को जो विश्वासु का जो एक्चुअली जब इस दरमियान क्या होता है कि वो सत्यलोक में जाके आते हैं तो बहुत सारे कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन हम वो डिटेल में नहीं जाएंगे। तो विश्वासु जो होता है वो कुंद को लेके आता है और उस कुंद को जो डीटी बनाने के लिए जो भगवान का अर्च विग्रह बनाने के लिए कई लोग आते हैं, कई कलाकार लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुंद को टच करने की कोशिश करते हैं तो उनका हथौड़ा और जो छेनी होती है वो गिर के टूट जाती है, तो कोई नहीं कर पाता है। तो फिर पता चलता है कि केवल एक व्यक्ति आता है जो बूढ़ा होता है, वो कौन होता है, विश्वकर्मा होते हैं। वो विश्वकर्मा एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आते हैं और वे कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, बोलते हैं कि लेकिन मैं भगवान का अर्च विग्रह बनाऊंगा लेकिन केवल एक शर्त पर कि मुझे एक बंद कमरे में 21 दिन का टाइम चाहिए। वो 21 दिन के अंदर 21 डेज बोलते हैं कि मेरे को टाइम चाहिए, उसमें मैं भगवान के अर्च विग्रह की प्रतिमा बनाऊंगा करके, लेकिन इस दरमियान मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, यदि कोई भी अगर आके मेरे को डिस्टर्ब किया तो मैं वहीं काम छोड़ के चला जाऊंगा। तो सब बोलते हैं कि ठीक है। तो राजा को बहुत इच्छा होती है भगवान के दर्शन करने की। तो क्या होता है कि 10 दिन तक वो अंदर कार्य चलते रहता है तो आवाज़ आती है हथौड़े की छीनी की, फिर कुछ दिन के बाद 14 दिन के बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है। तो राजा सोचते हैं कि इस बूढ़े ब्राह्मण ने 14 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं है, पानी भी नहीं पिया है, हो सकता है कुछ गलत नहीं हो गया करके। तो बड़ी कोशिश के बाद रानी की बात से वार्तालाप करके वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि ब्राह्मण वहाँ से गायब हो चुके हैं और भगवान के जो शरीर है वो पूरा तरह से प्रतिमा बनी नहीं है, वो आधा ही रह गया। तो उनको बड़ा दुख होता है कि अरे मेरे मूर्खता की वजह से जो भगवान का रूप है ये आधा रह गया है, तो अभी ये जो मैंने अपराध किया इसकी केवल एक ही सजा है कि मैं अपना प्राण त्याग दूँ। तो वे कुशाग्रास पर लेट के अपना प्राण त्यागने की कोशिश करते हैं। तो फिर भगवान उनको कहते हैं कि नहीं इंद्रद्युम्न, ये जो मेरा अर्च विग्रह है यही मेरा असली रूप है और तुम चिंता मत करो, मैं इस रूप में अपनी मर्जी से आया हूँ, तुम्हारी मर्जी से नहीं आया हूँ करके। तो तुम इस मंदिर में मेरी स्थापना करो और मैं जगन्नाथ के रूप में पूजा जाऊँगा। तो राजा इंद्रद्युम्न बड़े खुश होते हैं और वे ब्रह्मलोक में जाते हैं ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप डीटी इंस्टॉलेशन करो, आप अर्च विग्रह की स्थापना करो करके। सो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक्चुअली ये जो अर्च विग्रह है ये भगवान की अपनी अंतरंगा शक्ति से इस दुनिया में आए हैं, तो इसको स्थापित करना मेरी योग्यता में नहीं है, मेरी कैपेसिटी में नहीं है, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं केवल मंदिर पे एक झंडा लगाऊंगा, एक फ्लैग लगाऊंगा बस, और इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा करके, आप पूजा अर्च विग्रह की तैयारी करो। सो उस दिन से पहली बार ब्रह्मा जी ने ये जो स्थापना की तब से बताते हैं कि ये सत्यलोक की बात है एक्चुअली, ये भगवान का जो मंदिर था ये सतयुग का मंदिर है, ये आज का नहीं है, उसके बाद कई चेंजेस हुए, मंदिर छुप गया था फिर वापस उसकी डिस्कवरी की गई। तो ये जो श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया की जो मूर्तियां हैं और उनका जो ये रूप है ये सत्यलोक से चला आ रहा है, और आज भी हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी के अंदर कई भक्तगण जाते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। और जगन्नाथ जी बोलते हैं कि जगन्नाथ जी इतने दयालु है कि कई बार जो भक्त उनके मंदिर में उनका दर्शन करने नहीं जा सकते हैं वो खुद बाहर आते हैं उनको दर्शन देने के लिए रथ यात्रा के टाइम पे, और बताते हैं कि रथ यात्रा के टाइम पे यदि आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए या उनके रस्से को टच किया है तो फिर आप इस दुनिया में जन्म नहीं लेते। ऐसा बताया जाता है कि जब आपकी मृत्यु होती है तो आपकी आंखों के सामने आपकी पूरी फिल्म रिलीज होती है कि आपने जो पूरे पिक्चर में काम किया जन्म भर, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी फिल्म रिलीज होती है, और उस फिल्म के अंदर जब वो जगन्नाथ जी का चेहरा आता है जगन्नाथ रथ यात्रा, वहां पर वो फिल्म रुक जाती है और आप गोलोक चले जाते हैं। तो इतना महत्व है ये जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया के बारे में। तो ये भगवान की एक पौराणिक कथा है, पर इस भगवान का ये जो वास्तविक रूप किस तरह से आया उसकी एक और कथा है वो बताने की कोशिश करेंगे। कि एक बार ये होता है कि जब भगवान द्वारका में रहते हैं अपनी 16,000 रानियों के साथ, तो कई बार रात को सोते सोते द्वारकापुरी में भगवान उठ जाते हैं अचानक ही रात को, और उठ के चिल्लाते हैं हे राधे गोपी, और इस तरह के भाव में भगवान जब क्रंदन करते हैं, तो रानियां सोचती है कि क्या हो जाता है भगवान को बार बार, ये किस तरह की बात है करके, हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है फिर भी ये गोपी गोपी क्यों करते हैं करके, तो वो जानना चाहते हैं कि ये वृंदावन की लीला क्या है करके, पर उनको पता नहीं रहता वृंदावन क्या है। पर केवल एक ही व्यक्ति ऐसा होते हैं द्वारका में अदर देन कृष्ण बलराम, जो जानते जिसने भगवान की लीला स्वयं देखी रहती है, वह होती है रोहिणी माता, जो बलराम जी की माता होती है, उनकी मम्मी होती है, केवल उन्होंने भगवान की वृंदावन लीला देखी रहती है। तो सारी रानियां उनके पास जाके उनसे निवेदन करती है कि कृपया आप हमको भगवान की वृंदावन की लीला के बारे में बताओ, और बताते हैं कि भगवान इस संसार में इस धरती पर 125 वर्ष रहे थे, और 125 वर्ष में केवल 11 वर्ष वह वृंदावन में रहे, और 11 वर्ष के बाद जब वो वृंदावन से बाहर निकले तो फिर वापस फिजिकली कभी वृंदावन में गए नहीं। ऐसा बताते हैं कि भगवान वृंदावन से कभी बाहर जाते ही नहीं है, ही नेवर स्टेप्स आउट ऑफ वृंदावन, हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। लेकिन जब भगवान इस लीला में जब बाहर निकले फिर वापस कभी नहीं आए, और हालांकि उन्होंने सब्सटेंशियल पार्ट द्वारका में बिताया था, फिर भी बताते कि जो वृंदावन का महाभाव है, जो भाव वो भाव का साथी कोई नहीं है। तो जब रोहिणी माता बोलती है कि नहीं, मैं आपको वृंदावन की लीला के बारे में इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं जब वृंदावन के बारे में कहना शुरू करूंगी तो क्या होगा, तुरंत कृष्ण वहां आ जाएंगे, और यदि उन्होंने वृंदावन या गोपी के बारे में सुन लिया तो वो तुरंत द्वारका छोड़ के वापस वृंदावन चले जाएंगे, और आप सब लोगों को बिना कृष्ण के रहना पड़ेगा, तो इसमें रिस्क है, बता दीजिए आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। पर रानियां कहती है कि नहीं चलेगा ना, हमें भगवान की कथा में बड़ी रुचि है और हम जानना चाहते हैं कि वो क्या है करके आप हमें बताइए। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन किसी को दरवाजे पे खड़े रहकर पहरा देना पड़ेगा। तो सुभद्रा कहती है कि ठीक है चलो मैं पहरा देती हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण बलराम को रोक सकती हूँ, दूसरा कोई रोक नहीं सकता। तो रोहिणी माता अंदर बैठकर सभी रानियों को वृंदावन की लीलाओं के बारे में एक 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 करके बताते रहती है, और क्या होता है कि जहां कहीं भी वृंदावन की लीला होती है वहां पर कृष्ण बलराम आ जाते हैं, तो तुरंत कृष्ण वहां पर आते हैं, और वृंदावन की लीला के बारे में सुन के क्या होता है कि सुभद्रा मैया जो होती है, सुभद्रा का जो शरीर होता है वो एक अजीब प्रकार से उसमें परिवर्तन होने लगता है, कि उसके जो हाथ होते हैं वे अंदर जाने लगते हैं, उनका पैर शरीर के अंदर जाने लगता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और उनके मुंह पे एक बहुत बड़ी स्माइल आती है। और उस टाइम पे कृष्ण बलराम वहां आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो लोग भी वृंदावन की लीला को सुन के स्टंट हो जाते हैं, मतलब एकदम स्तंभित रह जाते हैं। बताते हैं कि जब भगवान की लीला का चर्चा होती है तो कई बार ऐसा होता है कि यदि हमने पहली बार कथा सुन रहे तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार सुनते तो मालूम है, नरसिंह भगवान नरसिंह चतुर्दशी आती है तो बोलते हैं मालूम है अभी क्या होगा, वो प्रहलाद को दुख देंगे हिरण्यकशिपु, बाद में नरसिंह भगवान आएंगे वो खंभा तोड़ेंगे हिरण्यकशिपु मारेंगे, हो जाएगी सब मालूम है करके। तो बताते कि इस तरह की हमारे पास मूड नहीं होना चाहिए भगवान की जब कथा सुनते हैं। बताते कि जब जब कथा सुनते हैं तो कैसा मूड होना चाहिए कि नहीं मुझे और चाहिए, मुझे और सुनना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि समझो आपके सामने कोई बहुत ही अच्छा समोसा बना के लाता है या पिज्जा बना के लाता है, तो आप क्या ये कहेंगे अरे यार लास्ट हफ्ते तो पिज्जा खाया था यार अभी नहीं खाना है, अभी इच्छा नहीं है, आप बोले कि नहीं तुरंत मेरा फेवरेट है लाओ यार तुरंत खाता हूँ करके। तो बड़ी जिज्ञासा से बड़े चाव से हम उस पिज्जा को या उस समोसे को खाते हैं करके, ये नहीं सोचते हैं कि लास्ट टाइम तो खाया था क्या जरूरत है अभी नहीं खाएंगे, तो नहीं तुरंत खाते हैं। तो उसी तरह अगर भगवान की कथा सुनिए, लास्ट टाइम सुनिए तो भी ठीक है, लेकिन इस बार भी सुनने मिल रही है तो उससे हमारा शुद्धिकरण होगा, तो उस तरह से सुनना चाहिए। तो तुरंत कृष्ण बलराम वहां पे जब आते हैं तो वे वृंदावन की लीलाओं को सुन के क्या होता है कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी हंसी आती है, और उनका शरीर भी गलने लगता है, और वो हाथ और पैर अंदर जाने लगते हैं, और उस सिचुएशन को बताते हैं कि वो महाभाव की अवस्था होती है। और उस अवस्था में क्या होते हैं, तुरंत नारद मुनि वहां पर प्रकट होते हैं। तो नारद मुनि जो है बताते कि नारद मुनि बजाई वीणा राधिका रमण नाम है, कि वो भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए मुक्त पुरुष से कहीं भी घूमते रहते हैं, और वो द्वारका में आ जाते हैं। और जैसे ही द्वारका में आते हैं तो गेट पे क्या देखते हैं कि कृष्ण बलराम और सुभद्रा मैया इस रूप में है। तो जैसे ही नारद मुनि आते हैं तो भगवान क्या करते हैं, तुरंत अपने वापस ओरिजिनल रूप में आने की कोशिश करते हैं, पर नारद मुनि वहां पर चिल्लाते हैं कि नहीं मैंने देख लिया मैंने देख लिया मैंने देख लिया आपका ये रूप मैंने देख लिया करके, और नारद मुनि वहां पर डांस करते हैं। तो नारद मुनि फिर बोलते हैं कि भगवान आपका ये जो रूप है ये बहुत ही सुंदर रूप है, और इसको केवल मैंने देखा है, और मेरी आपके चरण कमलों पर ये प्रार्थना है कि कृपया इस रूप को आप सब जगह सब जनों को दिखाओ, क्योंकि ये रूप किसी ने पहले नहीं देखा, मैंने भी प्रथम बार देखा है। तो भगवान कहते हैं कि यस नारद आप चिंता न करो, मैं कलयुग में श्री जगन्नाथ के रूप में आऊंगा तब सारे लोग मेरा दर्शन कर पाएंगे और इस रूप का दर्शन करके वो वापस मेरी तरफ आ पाएंगे। तो बताते कि भगवान के जो अर्च विग्रह है और भगवान में कोई अंतर नहीं है। बताते कि भगवान के नाम रूप गुण लीला में कोई अंतर नहीं होता। तो भगवान के जो अर्च विग्रह है वह स्वयं भगवान है। कई बार हम सोचते हैं कि ना ये तो काष्ठ की पुतली है या फिर ये तो मिट्टी के बने हुए हैं, धातु के बने हुए हैं, मार्बल के बने हुए हैं। और बताते हैं कि ये जो भगवान है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो जो जिनके पास सच में प्रेम की आंखें है वो भगवान को उस रूप में देख सकते हैं। और बताते हैं कि भगवान को ये रूप लेने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने ये रूप क्यों लिया? अपनी कृपा की वजह से। और वो हमको बताना चाहते हैं कि जैसे अभी जैसे यहाँ पर हम बैठे हैं और यहाँ पर ये जो वेव से ये उड़ रहे हैं जैसे जी टीवी का और सबका, पर हम लोग देख नहीं सकते हैं कि उसमें क्या आ रहा है करके। और उसको देखने के लिए हमको एक टेलीविजन बॉक्स की आवश्यकता होती है। तो यदि वो मूर्ख बॉक्स जो होता है उसमें ही हम चालू करेंगे तो देख पाएंगे कि हाँ यहाँ पर ये हीरो गाना गा रहा है या यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये समाचार आ रहा है करके। तो भगवान जो है वो सब जगह है। बताते हैं हर जगह भगवान है, ओमनी प्रेजेंस जिसको बोलते हैं। लेकिन हम लोग भगवान को देख नहीं सकते, तो हमको भगवान दिख सके इसलिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। नहीं तो भगवान को अर्च विग्रह के रूप में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर उनकी कृपा है इसीलिए वो हमको दर्शन देने के लिए आते हैं। तो बताते हैं कि श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का जो दर्शन करता है वही संसार में वापिस नहीं आता है। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की कथा में हम सिर्फ कुछ मिनट और कोशिश करेंगे बोलने की कि उनका जो सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है वो क्या है? रथ यात्रा। आप में से कोई जगन्नाथपुरी रथ यात्रा अटेंड किया है कभी? जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती है तो करीबन 8 से 10 लाख लोग अटेंड करते हैं उसको। और ये बहुत ही खर्चीला और बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव होता है जहाँ पर भगवान को अपने जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान का जो मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर, उसको नीलाचल कहते हैं, जो द्वारका के रूप में है, और गुंडीचा मंदिर जो है वो सुंदराचल वृंदावन के रूप में है। तो भगवान को द्वारका में से निकाल कर वृंदावन में ले जाने की जो प्रक्रिया है वो रथ यात्रा है। तो इस रथ यात्रा को खींचते हैं। बताते हैं कि जब अंग्रेज जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो उन्होंने समझ नहीं पाए कि रथ यात्रा एक्चुअली क्या है, कि एक बस लकड़ी के कुंद को खींचने के लिए लाखों लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और यदि आप जगन्नाथपुरी जाओ तो एक दिन पहले कोई नहीं दिखाई देगा, रथ यात्रा के एक दिन बाद कोई नहीं दिखाई देगा, लेकिन रथ यात्रा वाले दिन 10 लाख लोग। तो अंग्रेज समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है और बड़ी कोशिश की उन्होंने रथ यात्रा को बंद करने की, लेकिन कभी बंद नहीं कर पाए, सक्सेस नहीं हो पाए। और प्रभुपाद जी ने लंदन में कहा था कि आप लोग जगन्नाथ रथ यात्रा बंद नहीं कर पाए, लेकिन हमने जगन्नाथ रथ यात्रा आपके देश में शुरू कर दी। तो बोले जगन्नाथ जी वहां जाकर लंदन में रथ यात्रा कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में तो पब्लिक हॉलीडे होता है जब रथ यात्रा होती है। तो ये जो रथ यात्रा का जो उत्सव है, हालांकि बहुत डिटेल में है, वो सब चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि भगवान की कृपा होती है और हमें चांस मिलता है, मौका मिलता है, तो जरूर कोशिश करनी चाहिए कि एक बार हम रथ यात्रा अटेंड कर पाए। और क्योंकि पाबंदी है समय की और सब चीज़ों की, हम जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने कई रथ यात्रा अरेंज कर दी है। कई बार रथ यात्रा होती है, इवन लास्ट टाइम हमने दुबई में रथ यात्रा हुई थी, 2 हफ्ते पहले अलेन में रथ यात्रा थी, कुवैत में सब जगह 2 हफ्ते पहले अलेन में रथ यात्रा थी, एक विला में रथ यात्रा हुई थी, रासल खेमा में रथ यात्रा हुई थी। तो सब जगह प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा की है। पर रथ यात्रा के पहले एक थोड़ा समय लेके मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो गुंडीचा मार्जनम होता है जब भगवान को सुंदराचल ले जाया जाता है नीलाचल मंदिर से, तो ये जो गुंडीचा मंदिर है ये क्या होता है कि केवल कुछ दिन जब भगवान वहाँ पे रहते हैं तभी वो मंदिर में मूर्ति रहती है, अदरवाइज वो मंदिर खाली रहता है। तो मंदिर कई बार वो खराब हो जाता है और बहुत उसके अंदर गंदगी आ जाती है सब। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि नहीं, भगवान को जब हम लेके आते हैं तो उसको क्लीन करना चाहिए, उसको उसका मार्जन होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। तो बताते हैं कि भगवान को कहाँ लाने की कोशिश करनी चाहिए? अपने हृदय में, और इसीलिए हृदय का भी क्लीनिंग करनी चाहिए। तो गुंडीचा मार्जनम की जो स्टोरी है, ये जो लीला है, ये हमको हकीकत में हमारा मन साफ करने की क्रिया के बारे में बताता कि किस तरह से करना चाहिए। और बताते कि कई भगवान ने बहुत ही एफर्ट दिया था चैतन्य महाप्रभु ने इस गुंडीचा मार्जनम पे। तो एक जो उत्सव होता है अभी भी जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले गुंडीचा मार्जनम, उसमें बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मेरे को गुंडीचा मंदिर साफ करना है, इसलिए मेरे को बहुत सारे झाड़ू और वो सब चाहिए करके आप दो। तो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आपको तो एक्चुअली ये ना आपको जरूरत नहीं है ये सब करने की, लेकिन आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो मैं आपको देता हूँ। और प्रसंग आता है उसमें कहते हैं कि श्री हस्ते दीला सबार एक एक मार्जनी सब घन लन प्रभु चलीला अपनी। बताते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने क्या किया कि 100 झाड़ू लिए और एक 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 व्यक्ति को सबको झाड़ू दिया और कहा कि साफ करो, और इस तरह से वो सब चीज साफ करने लगे। फिर उन्होंने भगवान के सिंहासन से लगाकर सारी चीज साफ की, और बाद में और साफ करने के बाद फिर पानी मंगाया गया और पानी से गुंडीचा मंदिर को पूरा धोया गया और धो के सब यू नो साफ किया गया। और साफ करने के बाद जब वो कचरा जमा किया गया तो ऐसा बताते हैं कि सारे भक्तों ने मिलकर जो कचरा जमा किया था और चैतन्य महाप्रभु ने अकेले ने जो कचरा जमा किया था वो ज्यादा था उनसे। तो चैतन्य महाप्रभु बताना चाहते थे कि यू नो ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है ये बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि एक बार क्लीन करने के बाद बहुत सारी चीजें उसमें रह जाती है। इसलिए बताते हैं कि दूसरी बार उन्होंने आज्ञा दी कि वापिस से एक बार क्लीन करो, और उन्होंने अपने खुद के अंग वस्त्र से वो भगवान का सिंहासन और भगवान का मंदिर साफ किया, केवल ये बताने के लिए कि भगवान जब आएंगे जैसे अपने हृदय में भी, तो अपना हृदय बहुत साफ होना चाहिए। और जब उन्होंने देखा कि सारे वैष्णवगण यू नो अच्छी तरह से साफ कर रहे हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को बहुत संतोष हुआ। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं सब वैष्णव लेन ये दुई बार शोधिला देखी महाप्रभुर मन संतोष होइला। बताते कि जब दूसरी बार उसको साफ किया गया तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही संतोष हुआ और उन्होंने लगा कि यस बहुत ही आपने अच्छा काम किया है करके, और वो सारे भक्तों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। इस पर प्रभुपाद जी बहुत बड़ा परपट लिखते हैं कि एक्चुअली ये जो मार्जन दूसरी बार क्यों किया, क्योंकि एक बार जब हम हमारा सर दिल साफ करते हैं तो हमको ऐसा कई बार लग जाता है कि हम तो भक्त बन गए हैं, हमको बहुत सारी चीजें आ रही है, चलो कोई बात नहीं ना हम कुछ भी कर सकते हैं करके दूसरे को आज्ञा दे सकते हैं। बताते कि नहीं सेकंड टाइम किया करके, और बाद में बताते हैं कि जब भी मतलब वहां का जो वो दृश्य था साफ करने का, तो बताते हैं कि एक व्यक्ति जब पानी जब किसी को देता था और दूसरा व्यक्ति पानी मांगता था तो क्या कहता था, कृष्ण कृष्ण, केवल कृष्ण कृष्ण करके काम करते थे। कहते कृष्ण कृष्ण कही करे गाथे र प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे गाथ समर्पण। एक यदि मटका मांगता तो बोलता कृष्ण कृष्ण मेरे को मटका दो करके, तो दूसरा बोलता लो कृष्ण कृष्ण मटका लो करके। तो और कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे कहते हैं कि यही कहे से ही कहे कृष्ण नाम हैला संकेत सब काम। कि कोई भी काम करने के लिए केवल कृष्ण और हरि बोल का उच्चारण करते थे, दूसरा कोई बात नहीं। जैसे हम किसी को कहते कि यार झाड़ू दे करके, तो बोलते कृष्ण कृष्ण हरि बोल, तो उसको समझ में आता हाँ झाड़ू मांग रहे, बोलता हरि बोल ले लो करके। तो इस तरह से जो गुंडीचा मार्जन था वो पूरा मंदिर जब साफ किया, उसके बाद वो मंदिर क्लीन हुआ, और बाद में फिर रथ यात्रा का अरेंज हुआ, और बाद में रथ यात्रा के अंदर जब भगवान को बिठाया गया और फिर वो गुंडीचा मंदिर लाया गया, तो बताते कि जो रथ यात्रा का जो प्रोसेस था वो भी बड़ा ही अच्छा प्रोसेस है, और उसके अंदर भी कई चीज़ें कही गई है। हम सिर्फ 5 मिनट लेके यहाँ कथा समाप्त करेंगे, लेकिन जस्ट एक दो चीज़ बताना चाहते हैं कि जब रथ यात्रा थी, तो जब रथ यात्रा चलती थी तो बताते हैं कि वो जो रथ हैं वो करीबन 4 माले जितने बड़े बड़े रथ होते हैं, और कई लाख लोग उसको रथ को खींचेंगे तो चलते हैं। जैसे हम रथ यात्रा करते हैं तो उसमें स्टीयरिंग व्हील और वो ब्रेक वगैरह होता है, तो उसको करके करते हैं, क्योंकि शहरों में उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में जो होता है वहाँ पर कोई व्हील कुछ नहीं होता है, ना स्टीयरिंग होता है ना ब्रेक होता है। जगन्नाथ जी की इच्छा से वो रथ चलता है, जगन्नाथ जी के रथ से वो इच्छा से वो रथ रुकता है, और केवल भक्त उसमें सहायता करते हैं कि वो बड़े जोर से, बताते हैं कि इतनी जोरदार ध्वनि होती है कि जो एरोप्लेन उड़ने की जो आवाज़ होती है वो भी उसके सामने फैल है, इतनी बड़ी भयंकर तीव्रता से वो ध्वनि होती है, तुमुल ध्वनि जब वो रथ निकलता है। और वो पहंडी उत्सव उसको बोलते हैं जब रथ पे जगन्नाथ जी को ले जाया जाता है, तो जब रथ को खींचते हैं तो बताते हैं कि जब जगन्नाथ जी की इच्छा रहेगी जहां रथ जाना चाहेगा वहां जाएगा। ऐसा बताते हैं कि जो वो रास्ता है कई बार उसमें रथ सीधा नहीं चलता, यदि जगन्नाथ जी की इच्छा हो तो रथ टेढ़ा हो जाता है, और वो टेढ़ा होकर यदि किसी जगह चला गया तो उस जगह पे किसी का घर या दुकान है तो उसको तोड़ना पड़ता है, और रथ उसको तोड़ के बाहर निकलता है। तो बताते हैं कि जिसकी दुकान या घर टूटता है वो बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता है कि जगन्नाथ जी मेरे घर में प्रवेश किए स्वयं, तो इसे बड़ी यू नो बड़ी अच्छी बात मानी जाती है। तो एक श्लोक कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कहते हैं क्षण स्थिर हन रहे तीन लेह ना चले ईश्वर इच्छाए चले ना चले करो भले। वो बताते हैं कि जो रथ जो चल रहा था वो कैसे चल रहा था, ईश्वर इच्छाए चले ना चले करो भले। देखिये जो कई लोग खींच रहे थे उस रथ को और वो सोच रहे थे कि हम रथ को खींच रहे हैं, और नहीं, जब जगन्नाथ जी की इच्छा होती थी रथ रुकता था, जब जगन्नाथ जी की इच्छा होती थी रथ आगे चलता था। और अच्छा बताते कि जगन्नाथ जी की रथ क्यों रुकता था, बताते हैं जब चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने जब नृत्य करते थे, वो बहुत ही अच्छा पास टाइम है, कभी समय मिला तो हम भविष्य में बताने की कोशिश करेंगे, कि रथ यात्रा में जब चैतन्य महाप्रभु नाचते थे तो उनका नृत्य देखने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में आए हैं, जगन्नाथ जी रुक जाते थे और वो नृत्य देखते थे। और कई बार फिर चैतन्य महाप्रभु को पता चलता था कि ये रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो पीछे जाते थे रथ के और अपने सिर से रथ को जरा धक्का मारते थे तो रथ आगे चलता था। ऐसा बताते हैं कि 3 लाख लोग जो रथ को खींच रहे हैं उनमें इतनी शक्ति नहीं कि रथ को हिला सके। और बहुत ही अच्छे श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन बताते हैं, बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो वो इतना जोरदार नृत्य करते थे कि वो देखते ही बनता था, कि कई बार वो हवा में उड़ जाते थे नृत्य करते करते, और कई बार धम्म से नीचे गिरते थे, और कई बार कई भाव उनके शरीर में प्रकट होते थे ये नृत्य को करते करते। तो बताते हैं कि उद्धांत नृत्य प्रभु करिया हुकार, चक्र भ्रमी भ्रमे याचे आलत आकार। बोलते हैं कि जब वो नृत्य करते थे तो किस तरह करते थे, एकदम उत्थान होके, मतलब इतना जबरदस्त नृत्य करते थे कि वो ऊपर हाई जाते थे और बड़े ही सिंह की तरह गर्जना करते थे, और वो गर्जना करते करते नृत्य करते थे, और वो जब घूमते थे डांस करते समय गोल गोल, तो ऐसा लगता था कि एक अग्नि की लपट घूम रही है जोर से, क्योंकि उनका शरीर कैसा था, गोल्डन के रूप में। और वह गोल्डन जो तप्त कांचन उनका जो शरीर था उसके बारे में और बताते हैं कि आछंद खाने पड़े भूमि गड़ी जाय, सुवर्ण पवत्र याचे भूमि ते लौटाय। बताते कि आछंद खाने पड़े भूमि गड़ी जाए, कि वो कई बार क्या करते कि आसमान में उड़ जाते थे और कई बार आके वो भूमि पे धम्म करके गिरते थे, और वो सुवर्ण पर्वत याचे भूमि ते लौटाय। तो जब वो गिरते थे और जब वो घूमते थे तो ऐसा लगता था कि एक सोने का पर्वत जो है वो नीचे घुमाए और वो घूम रहा है करके। तो चैतन्य महाप्रभु उस तरह से घूमते थे। तो ये मतलब रथ यात्रा का सब वर्णन है। तो हम बस यहीं पे कथा समाप्त करेंगे, केवल एक छोटी सी चीज कहके कि आज का जो दिन है वो एक महत्वपूर्ण दिन है। चैतन्य महाप्रभु के जो एसोसिएट्स थे उनमें एक महत्वपूर्ण एसोसिएट थे वक्रेश्वर पंडित प्रभु, और वक्रेश्वर पंडित प्रभु की ये खासियत है कि वो एक बड़े ही अच्छे नृत्यकर्ता थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे उसी तरह वक्रेश्वर पंडित भी नृत्य करते थे। और बताते कि रथ यात्रा में महाप्रभु चैतन्य ने 7 टोली बनाई थी नृत्य करने वालों की, और उसके एक टोली में जो ना मुख्य नृत्य करता थे वो थे वक्रेश्वर पंडित प्रभु। और वक्रेश्वर पंडित प्रभु जब नृत्य करते थे तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गाते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि नृत्य करते करते बताते हैं कि वक्रेश्वर पंडित प्रभु 72 घंटों तक निरंतर नृत्य कर सकते थे। हम लोग केवल 5-10 मिनट आधा घंटा नाचते तो थक जाते हैं, पर वक्रेश्वर पंडित प्रभु 72 घंटे नृत्य किया करते थे। और जब एक बार वो नृत्य कर रहे थे तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा, 10 सहस्र गंधर्व मोर देन चंद्रमुख, तार गाए मुनि नाचो तबे मोर सुख। बोलते हैं कि ओ चंद्रमुख, ओ भगवान चैतन्य महाप्रभु, आप मुझको 10,000 गंधर्व लाके दीजिए और उन गंधर्वों को कहिए कि वो गाए, और जब वे 10,000 गंधर्व गाएंगे तो मैं नाचूंगा। इतना उत्साह था उनको भगवान के लिए नृत्य करने का। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा, प्रभु बोले तुम्ही मोर पक्ष एक साख, आकाश उड़ीता याची पान आर पाख। वो कहते हैं कि हे वक्रेश्वर पंडित, प्रभु कहे तुम्ही मोरा पक्ष एक साख, कि तुम जो हो वो मेरे एक पंख के रूप में हो, मेरी एक भुजा के रूप में हो। आकाश उड़ीतो यदि, अगर मैं आकाश में उड़ने लगता कभी, तुम्हारे जैसा एक और व्यक्ति मेरे पास होता। कहता कि तुम मेरे एक पंख हो, यदि मेरे पास एक और पंख होता तो मैं क्या करता, आसमान में उड़ जाता। वो इतना अच्छा नृत्य करते थे। और वक्रेश्वर पंडित प्रभु ने एक बार, मतलब बताते कि ज़्यादा कथा डिटेल में नहीं है वक्रेश्वर पंडित प्रभु के बारे में, लेकिन एक बार देवानंद पंडित जो थे उन्होंने श्रीनिवास के प्रति अपराध किया था। तो दामोदर पंडित को भगवान चैतन्य महाप्रभु की मर्सी तब तक नहीं मिली जब तक एक बार उन्होंने वक्रेश्वर पंडित प्रभु की सहायता नहीं की। ऐसा बताते कि जब वक्रेश्वर पंडित प्रभु अपनी तीव्रता से नाच रहे थे तो क्योंकि भीड़ उनको डिस्टर्ब ना करे, दामोदर देवानंद पंडित ने उनको एक लकड़ी से और ऐसे खड़े रह के उनकी रक्षा की थी कि ताकि उनका नृत्य जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो क्योंकि उन्होंने एक भक्त के प्रति सहायता की थी वह कंसिडर करके चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनी कृपा दी थी, अदरवाइज वो कृपा के पात्र नहीं थे। तो ये वक्रेश्वर पंडित प्रभु की वजह से ही उनको भगवान की कृपा मिली थी। तो वक्रेश्वर पंडित प्रभु बहुत ही मतलब उत्कृष्ट नृत्यकार थे और चैतन्य महाप्रभु के रथ यात्रा के टाइम पे नाचा करते थे और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कई श्लोकों में उनके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार वो नृत्य किया करते थे। तो बस हम क्योंकि समय बहुत हो गया है और हम समय से बंधे हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं ले सकता मैं आप लोगों का। हमारी इच्छा थी कि हम और डिटेल में रथ यात्रा के बारे में बताएं, बट कभी और समय मिलेगा तो तभी बताने की कोशिश करेंगे। सो इसमें अभी हम कथा यहीं समाप्त करते हैं और इस कथा में मैंने आपका समय तो ज़्यादा ले लिया इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उसके अन्यथा भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई रहेगी तो कृपया माफ़ करना, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारी कोई योग्यता या क्षमता नहीं है, जितना भी थोड़ा बहुत हमें पता चला उतना बताने की कोशिश की। सो मैं आप सबसे आपके आशीर्वाद की यू नो अभिलाषा रखता हूँ और अभी हमारे पास प्रश्नोत्तर का भी समय नहीं है, कभी और देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री गौर निताई की, निताई गौर प्रेमानंदे।